हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही तेज कदमों से वार्ड से बाहर निकली। कॉरिडोर में रोशनी धीमी थी और दूर से नर्सों की हल्की हल्की बातें आ रही थीं। उसने चारों तरफ देखा, रुहान कहीं दिख नहीं रहा था। वो कॉरिडोर के आखिरी छोर पर बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, जहां एक छोटा सा बालकनी जैसा एरिया था। वहां रुहान अकेला खड़ा था, पीठ दीवार से टिकाए, हाथों में सिर थामे, आंखें बंद। अनाही धीरे से उसके पास गई। रुहान? रुहान ने आंखें नहीं खोली, बस आवाज में कड़वाहट के साथ बोला, मुझे अकेला छोड़ दीजिए मैडम जी, मैं ठीक हूं। अनाही ने एक गहरी सांस ली और रुहान को जबरदस्ती अपने गले लगाते हुए बोली, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए रुहान जी, मैं सब कुछ नहीं संभाल पा रही हूं। अगर इस वक्त आप भी गुस्सा हो जाएंगे तो मैं कहां जाऊंगी? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि घर वालों को कैसे बताऊंगी, क्या क्या करूंगी मैं। प्लीज आप मेरा साथ दीजिए ना, ऐसे मुझ पर गुस्सा मत करिए। रुहान ने इस बार आंखें खोलकर अनाही के चेहरे को देखा, जिस पर सच में तकलीफ नजर आ रही थी। रुहान ने फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसका सर अपने सर से जोड़ते हुए बोला, मैडम जी प्लीज आप जिसकी मदद करना चाहती हैं उसकी करिए, जिसको संभालना चाहती हैं उसे संभालिए, लेकिन दूर से, उनके इतने करीब जाकर नहीं। मैं आपको किसी के करीब नहीं देख सकता हूं। अनाही की आंखें पल भर में आंसुओं से भर गईं। उसने कांपते होंठों से कहा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वेदांत जी का यहाँ कोई दोस्त नहीं है, आप भी उन्हें नहीं संभाल रहे हैं, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, और एक अच्छी दोस्त होने के नाते मुझे लगा कि मुझे उन्हें संभालना चाहिए। रुहान ने अनाही पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, उनकी माँ है ना उन्हें संभालने के लिए, मेरे पास कोई नहीं है। आपको अभी लग रहा है कि वेदांत भाई अकेले हैं, पर वो अकेले नहीं है। आप प्लीज उनके पास मत जाओ, मुझे बुरा लग रहा है। अनाही समझ पा रही थी रुहान की पजेसिवनेस को। उसने आखिरी बार उम्मीद से कहा, क्या आप चाहते हैं कि वेदांत जी खुद को कुछ कर लें? आपको पता है वो ऐसा करने की बातें कर रहे थे, और अगर मेरे गले लगाने से उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस होता है तो इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती है। अपने भाई पर भरोसा रखें, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी चीज कभी नहीं छीनेंगे, और हम दोनों के बारे में तो ऐसा ख्याल भी नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। हम कब से अच्छे दोस्त हैं, आज तक कभी मुझे उनकी तरफ अट्रैक्शन तक फील नहीं हुआ, बस नॉर्मल कनेक्शन है हमारा, आप भाई बहन भी बोल सकते हैं। रुहान ने बच्चों की तरह जिद करके कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं समझना है, आप उन्हें गले नहीं लगाएंगी, बस बात खत्म। अनाही ने गहरी सांस ली और फिर रुहान के बालों को सहलाते हुए बोली, ठीक है अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब आप गुस्सा करना बंद करिए। ये सुनकर रुहान ने अपनी पकड़ अनाही पर और भी ज्यादा मजबूत कर दी और उसके होंठों पर अचानक ही स्माइल आ गई। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अनाही का जवाब सुनकर उसे लगा नहीं था कि अनाही इतनी आसानी से मान जाएगी, और वो भी तब जब टॉपिक इतना ज्यादा सेंसिटिव हो। कभी कभी रुहान को अपनी बातें हद से ज्यादा इमैच्योर्ड लगती हैं, लेकिन फिर भी उसका मन करता है कि वो अनाही से सब कुछ शेयर कर दे जो उसके दिल में चल रहा है। कुछ भी ऐसा ना रहे जो अनाही को ना पता हो, और आगे चलकर रुहान उस बात को इतना सोच ले कि वो अनाही के खिलाफ उस बात को इस्तेमाल करने लग जाए। वो चाहता है अनाही हमेशा उसके पास रहे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो गलत हो या सही हो। थोड़ी देर बाद अनाही ने उसे कुछ अलग करने की कोशिश करते हुए कहा, अब हमें कैसे भी करके घर वालों तक ये न्यूज पहुंचानी होगी और उन्हें संभालना भी होगा, तो क्या आप मुझे छोड़ेंगे, मैं कॉल कर लूं सबको? रुहान ने गहरी सांस ली और फिर अनाही से अलग हो गया। अनाही के हाथ कांप रहे थे फोन में नंबर डायल करते वक्त भी। उसने सबसे पहले राधिका को कॉल किया, क्योंकि उसे माधवी से तो जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। राधिका उसे थोड़ी ज्यादा नरम लगती थी, शायद वो प्रिया को तकलीफ में देखकर अनाही की बात मान ले और उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे। थोड़ी देर बाद ही राधिका ने कॉल उठा लिया था। राधिका फिलहाल नेल पॉलिश लगा रही थी अपनी साड़ी के मैचिंग की। उसने अनाही से थोड़ा गुस्से में कहा, कहो बहू कैसे याद कर लिया अपनी चाची सास को, ऐसे तो कभी याद आती नहीं है मेरी, जरूर कोई काम होगा, चलो जल्दी बताओ, उसके बाद मुझे अपने हेयर्स कल करने हैं, आज तुम्हें पता है मैं और तुम्हारे चाचा जी डेट पर जाने वाले हैं। राधिका अपनी पूरी बात कहे जा रही थी, अनाही ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, आई एम सॉरी चाची जी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर मुझे आपसे जरूरी काम था। रोने के कारण अनाही की आवाज हल्की भारी हो चुकी थी। राधिका ने तुरंत ही घबराते हुए कहा, क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? अनाही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, चाची जी एक्चुअली प्रिया का मिसकैरेज हो गया है और इस वक्त वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, तो मैं चाहती हूँ आप एक बार मम्मी जी को खाना वगैरह खिला दो अगर उन्होंने नहीं खाया है तो। मैं नहीं चाहती ये सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो जाएं और फिर खाना पीना भी छोड़ दें। अगर पहले से कुछ खाया होगा तो कल तक मैं उन्हें मना लूंगी। राधिका ने थोड़ी देर बाद गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है तुम इसकी चिंता मत करना, मैं सबको खाना खिला दूंगी। ये सुनकर अनाही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच चाची जी, आप उनको खाना खिला दीजिए,
मैं रात को कॉल करके बता दूंगी कि ऑफिस में ज्यादा वर्क था इसलिए हम लोग नहीं आ पाए, और कल सुबह तक शायद आप लोगों को यहाँ हॉस्पिटल प्रिया से मिलने के लिए बुला लूंगी। राधिका ने हाँ कहा और फिर अनाही ने कॉल कट कर दिया। रोहान चुपचाप उसके पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। अनाही ने जैसे ही पलट कर देखा तो रोहान ने बार बार पलके झपकाते हुए कहा, आपको सबकी फिक्र होती है। अनाही को रोहान की बात बहुत अटपटी लगी। उसने हैरान होते हुए कहा, इससे क्या मतलब है आपका? रोहान ने धीरे से कहा, मेरा मतलब है कि अब आप अपनी मम्मी जी के बारे में भी कितना सोच रही हो। हो सकता है उन्हें कोई फर्क ही ना पड़े और वो आराम से खाना खाएं। अनाही ने कुछ पल सोचा और फिर रोहान के करीब जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, आपको पता है वो इस बच्चे के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी। ये सोच सोचकर वो पूरे दिन मुस्कुराती थी कि वो दादी माँ बनने वाली हैं। अपने हाथों से बच्चों के लिए स्वेटर बुन रही थी। रोज प्रिया के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं ताकि अपने पोते या पोती को आते ही बहुत सारे गिफ्ट दे सके। और आप कह रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या आपने उन्हें देखा नहीं है? जब से प्रिया के प्रेगनेंसी की खबर आई थी वो कितनी ज्यादा खुश रहने लगी थी। यहाँ तक कि अब उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि उन्हें कोर्ट कब जाना होता है। वो भी मैं खुद देख लेती हूँ, और ना ही वो मुझे जाकर पूछता है कि मैं कोर्ट गई थी या नहीं। वो अपनी उस बोरिंग सी लाइफ से बाहर आ चुकी हैं। मुझे डर है कि ये खबर मिलने के बाद वो फिर से पहले जैसी ना हो जाए, जो बिल्कुल जिंदा लाश बनकर रहती थी। बोलते बोलते एक बार फिर अनाही का चेहरा परेशानी से भर गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने ख्याल को झटकते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं है, पर हम कोशिश कर सकते हैं सब कुछ अच्छे से हैंडल करने की, और इन सब के बीच आप प्लीज अपना ख्याल रखना। ये ना हो कि मैं बाकी लोगों का ख्याल रखने में ही रह जाऊं और मेरा पति बीमार हो जाए।
इतना बोलकर अनाही ने अपनी पंजों को ऊपर उठाते हुए रोहान के माथे को चूम लिया। रोहान और अनाही की हाइट में थोड़ा डिफरेंस था, इसलिए उसे रोहान को किस करने के लिए थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। रोहान ने भी उसकी मदद करते हुए दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़कर थोड़ा ऊपर की तरफ कर दिया, जिसके बाद अनाही ने आहिस्ता से उसके होठों को चूमते हुए कहा, हो सकता है अस्पताल में कैमरे लगे हों तो हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, चलिए। अनाही की ये बात सुनकर ना चाहते हुए भी रूहान के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, और एक बार फिर वो वेदांत और प्रिया जी जिस रूम में थे उसके अंदर चले गए।